हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है इस साप्ताहिक श्री कृष्णा भावना में कार्यक्रम में, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुख और स्वस्थ होंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबको सुखी और स्वस्थ रखे। पुनः मैं आप सबके सेवा में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी द्वारा प्रस्तुत राम कथा पेश कर रहे हैं। लीजिए महाराज जी को।
तात तुम्हार मात वैदे ही पिता राम सब हाथ समय, और अवध तहां जहां राम निवास हो तहां दिवस जहां भानु प्रकाश, अयोध्या तो वही है जहां राम रहेंगे। ये अयोध्या अयोध्या नहीं, जहां राम रहेंगे वही अयोध्या रहेगी, क्योंकि जहां सूरज रहता है वही दिन होता है। सूरज के बिना दिन की कल्पना नहीं हो सकती। सुमित्रा के एक प्रकार से कहने का आशय है कि पुत्र तुमने बहुत गलती किया कि तुम मुझसे मांगने आए आज्ञा, तुमको तो सीता से मांगना चाहिए था ना, तुम्हारी माँ तो सीता, मुझसे क्यों आज्ञा मांगने आए। तुम्हारे माता पिता वैदेही और राम है, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा मन सब प्रकार के सुख की आसक्ति छोड़ा, अयोध्या को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, सबको छोड़ छाड़ कर तुम्हारा मन जो राम के चरणों में अनुरक्त है। तो मैं धन्य हो गई कि हमारे कोख से ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो भगवान से इतना प्रेम करता है। और आगे चलकर वे कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। इस संसार में वही नारी पुत्रवती है, पुत्र वाली है, जिसका पुत्र कृष्ण का भक्त, भगवान का भक्त। इतनी ही बात नहीं कहती है, एक माँ कितने कठोर शब्दों में कह रहे, नतर बांझ भल बाद बियानी, राम विमुख सुते हितहानी। जिस स्त्री का पुत्र राम का भक्त न हो तो अच्छा है कि वो बल्कि बांझ रह जाती, उसने व्यर्थ ही बच्चे को जन्म दिया। जिसका पुत्र भगवान का भक्त न, ये माँ बोल रही। पुत्रवती जुवती जग सोई, वही जुवती पुत्रवती जिसका पुत्र भगवान का भक्त होता है। एक पुत्र उत्पन्न करने में स्त्री का यौवन समाप्त माना जाता है, ऐसा लिखा गया है। जितना खून लगता है एक पुत्र के जन्म देने में, उससे एक प्रकार से मूल यौवन समाप्त हो जाता है। तो इतना खून लगा करके, परिश्रम करके और पुत्र उत्पन्न किया, और पुत्र भगवान का भक्त हो गया, तब तो सार्थक हो गया जन्म देना। वही असली माँ, माँ बनना सार्थक हो गया, और नहीं तो व्यर्थ। तो भूरी भाग भाजन भयो तो समेत बल जाओ, जो तुम्हारे छल छाड़ मत कि राम पद ठा। मैं बहुत भाग्यशालिनी हूँ, बहुत भाग्यशालिनी हूँ, मैं धन्य हूँ कि मेरा बेटा सब छल कपट छोड़ करके, सुख की भावना छोड़ करके राम के चरणों में इतना प्रेम किया। तो तुम जाओ उनके साथ और सब प्रकार से उनकी सेवा करो। राग रोष ईर्षा मद मोह सपने जन इनके बस हो। बेटा सपने में भी राग के बस में मत होना, क्रोध के बस में हिम्मत होना, राग रोष ईर्षा और ईर्ष्या के मद में बस में ना होना कम। तो जीवन के जो दोष है उनको बता रही, अर्थात सपने में भी मत सोचना कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी अयोध्या में है, राग का ही अर्थ। राग छोड़ दो, छोड़े तो छोड़े, मेरा स्मरण मत करना, अयोध्या का कभी सोचना ही मत, और कभी भारत से ईर्ष्या मत करना कि राजा हो गया है तो हमें भी होना चाहिए था। राग रोष और क्रोध नहीं करना, राग रोष ईर्ष्या मद मोह सपने जन इनके बस हो, यही है माँ का कर्तव्य। अपने पुत्र को सिखाना चाहिए, तपस्या करो बेटा, भगवान कृष्ण का भजन करो, एकादशी व्रत करो, सवेरे उठ जाओ, ये माँ का कर्तव्य है कहना। ऐसा नहीं माँ केवल ऐसे जो सुख से रहना है, दुख मत सहो, भोर में मत उठो, ठंडा लग जाएगा, ये हो जाएगा, और कितना दिन बचा करके रखोगे। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को कह दिया जाओ वन में, 5 वर्ष के बच्चे को, भगवान है पोषने वाले, भगवान रक्षा करने वाले, अपना जो कर्तव्य है वही कहना चाहिए। तो कर एक जाओ, राग रोष मद के बस मत होना, और सब प्रकार का विकार छोड़ करके राम की सेवा करना। जाते जाते अंत में सुमित्रा ने यह कहा कि जे ही न राम बन लहा ही कलेश सोसित करहु इहै उपदेश। राम को जैसे भी हो कष्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उनका कुछ भी बाल बंका नहीं होना चाहिए। रात में रक्षा करना, पहरा देना, तुम मत सोना, माँ का आदेश है। राम की रक्षा करना, राम के लिए पानी जुटाना, भोजन जुटाना, बिस्तर लगाना, मेरे उपदेशों का सार यही है पुत्र, कि राम को वन में कष्ट नहीं होना चाहिए, बस इसके लिए तुम जाओ। तो राम का बॉडी गार्ड कहिए या कोई भी सेवक, सेवा करने वाला लक्ष्मण जी थे, इसलिए तो भगवान के साथ लक्ष्मण जी हमेशा रहते। तो भगवान के अन्य परिकर भी बहुत से हैं, लेकिन हनुमान जी और लक्ष्मण जी साथ में रहते। इस प्रकार की चेतना राम लक्ष्मण जी की थी, और माँ ने ऊपर से बहुत ही सुंदर शिक्षा दिया, तुम जाओ सेवा करो, राम को कष्ट नहीं होना चाहिए। और बहुत सुंदर छंदों में गाकर सुमित्रा ने कहा है कि बहुत अच्छा हुआ पुत्र, तुम राम के प्रेमी बने। तो लक्ष्मण जी फिर प्रणाम किए और चले बहुत जोर से। तो उपमा दी गई है कि जैसे वन का जानवर कहीं बांधा गया हो जबरदस्ती, और कहीं बागुर टूट जाए, वो बंधन टूट जाए तो वन की तरफ भागता है, उसी तरह से लक्ष्मण जी का बंधन टूटा, भागे जोर से। फिर वो सोच रहे थे पता नहीं माँ क्या कहेगी, आज की माँ होती तो कह देती कि तुम तो जाओगे, लेकिन ये उर्मिला बेचारी रोएगी ऐसे, और मोह उत्पन्न करा दे, काहे को विवाह किया जब जाना ही था तो ऐसे ऐसे कह सकती थी। अरे बहुत ही करुण दृश्य है, हम तो नव विवाहिता पत्नी घर में है और तुम राम के साथ जा रहे हो, तो ये भी कह सकती थी तब इसको भी लेते जाओ, सीता रहेगी, दोनों बहने ठीक से रहेंगे एक साथ। कुछ नहीं कहा, तुम जाओ सेवा करो। तो उर्मिला जी जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, वे अयोध्या में रहकर लक्ष्मण जी का ध्यान करती थी, पूजन करती थी। लक्ष्मण जी न तो पूछने गए और न तो उर्मिला की कोई शिकायत आई। ऐसे बाद में कुछ ऐसे लेखक हुए हिंदी में जिन्होंने उर्मिला के प्रति जो अन्याय उनके दृष्टि में लगा उसको लिखे हैं, कि कवियों ने उर्मिला की उपेक्षा की, कवियों की उर्मिला विषय उपेक्षा, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, वाल्मीकि जी ने या तुलसीदास जी ने या वेदव्यास देव ने उर्मिला के विषय में क्यों नहीं लिखा। हम लगता है कि ये लोग कोई सू करेंगे वाल्मीकि जी पर, केस करेंगे कि क्यों नहीं लिखे उर्मिला के विषय, क्या जरूरत थी। लक्ष्मण जी सब मिलाकर राम के भक्त हैं। जब वो कहते हैं कि गुरु माता पिता को कुछ नहीं जानता हूं तो पत्नी को क्या जानेंगे, बताइए, यही भक्त का स्वभाव। छोड़ दिए तो छोड़ दिए थे, अब उनके सामने धर्म कर्म नीति कुछ नहीं रह गया, राम की सेवा करना, राम को सुखी करना उनके जीवन में बस यही सामने दिखाई देता था और कुछ नहीं। और ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, जैसे द्रोणाचार्य परीक्षा ले रहे थे सब बच्चों की, राजकुमारों की, तो एक बनावटी पक्षी शाखा पर ढंगवा दिए और कहे कि पक्षी के गर्दन में बाण मारना है। तो परीक्षा ले रहे थे, कई लोगों को बुलाया और पूछे क्या देख रहे हो, वे लोग धनुष पर बाण चढ़ा करो तैयार होते थे तो द्रोणाचार्य पूछते थे क्या देख रहे हो, तो कहता है कोई नीला आसमान देख रहा हूँ, और क्या देख रहे हो, वृक्ष देख रहा हूँ और पक्षी देख रहा हूँ। तो द्रोणाचार्य कहता ठीक है रहने दो बैठ। सब लोग देखने लगे, कोई कहा कि मैं वृक्ष देख रहा हूँ, कोई कहा पक्षी देख रहा हूँ। अर्जुन से जब पूछे क्या देख रहे है तो उन्होंने कहा पक्षी का गर्दन देख रहा है, बस उसका गला देख रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम मार सकते हो, और अर्जुन ने बाड़ा मारा बाण तो पक्षी का गर्दन कट। तो अभी बहुत बहुत देख रहा है तो क्या करेंगे। लक्ष्मण जी और कुछ देख ही नहीं रहे थे, वे राम को देख रहे थे, इनकी सेवा करनी है। पत्नी मरे चाहे बाप मरे चाहे गुरु मरे कुछ भी हो, भगवान की सेवा करनी है। लक्ष्मण जी के लिए यही ठीक था, सीता जी के लिए ठीक था कि वे पति की सेवा करें, भगवान के लिए ठीक था कि वे अपनी पत्नी की देख रेख करें, उसको सुख दे। लेकिन लक्ष्मण जी के लिए यही धर्म था बस राम की सेवा करें। जिस समय भगवान श्री राम तपस्वी का वेश बनाकर अयोध्या से निकल रहे थे, अयोध्या में हाहाकार छा गया। मनुष्य तो छाती पीट रहे थे, सिर पीट रहे थे, रो रहे थे। इतना ही नहीं पशु पक्षी भी बिलख रहे थे, पेड़ पौधे मुरझा गए। तत्काल अयोध्या पेड़ सूखने लगे, लताएं कुमलाने लगी भगवान के विरह में, क्योंकि भगवान परम प्रिय हैं और वे अयोध्या को छोड़कर जा रहे थे। अतः सभी बहुत दुखी थे। बाद में उन सबों ने यह निर्णय किया कि हम अयोध्या नहीं रहेंगे, राम के साथ ही वन में जाएंगे। वृद्धों को और बच्चों को छोड़कर सब लोग चल दिए अयोध्या छोड़कर। भगवान फेर रहे थे बहुत ही नम्र भाषा में, प्रेममय भाषा में, परंतु लोग लौटे नहीं, चलते जा रहे थे साथ में। तो लोग जा रहे थे, इधर महाराज दशरथ भगवान के विरह में बहुत व्याकुल हो गए, कभी कभी मूर्छित हो जाते थे। उन्होंने अपने मंत्री सुमंत्र जी से कहा कि हे मित्र आप रथ लेकर के जाइए, हमारा पुत्र कभी भी पैदल नहीं चला है इस तरह से, और वो भी वन के रास्ते में, तो आप मेरे रथ को ले जाइए और 14 वर्ष के बदले 2-4 दिन वन में भ्रमण करा करके और लौटा लाइए। आप आग्रह करके कहिएगा कि पिताजी ने कहा है कि आप रथ पर चढ़िए, और वन जाने की प्रतिज्ञा मैं कर चुका हूँ वन भेजने की, तो इसलिए 2-4 दिन बस रथ पर बैठा करके वन भ्रमण करा करके लेके आइए। आप कहिएगा कि आपके पिताजी ने ऐसा कहा। तो सुमन जी रथ लेकर के चले गांव से बाहर, अयोध्या से बाहर जो भगवान जा रहे थे, सैकड़ों हजारों लाखों लोग साथ साथ जा रहे थे, नर और नारी सब जा रहे थे अयोध्या छोड़। लोग लगे कहने कि अब हम किस काम के लिए अयोध्या रहेंगे, वह घर वह धन वह परिवार चल जाए जो राम के पास जाने में बाधा दे रहा। सब लोग जा रहे थे तो सुमंत्र जी पहुंचे भगवान राम के पास और उन्होंने विनय किया कि आपके पिताश्री ने आज्ञा दी है, आप कृपया रथ पर चढ़ जाइए। तो भगवान अपने पिता की आज्ञा मानकर रथ पर चढ़ गए, पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ, बाकी और सब लोग पैदल चले जा रहे थे। भरत और शत्रुघ्न गांव पर नहीं थे, वे अपने मामा के यहाँ थे। इस प्रकार भगवान चले, किसी ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं और साथ में खाने पीने का सामान भी कोई नहीं है। जब राम बिना खाए जा रहे थे तो अयोध्या के सभी लोग बिना खाए ही चल दिए। चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे, प्रथम वास तमसा भय। तमसा नदी आज भी है, जो लोग उस क्षेत्र में कभी गए होंगे और देखे होंगे। तो तमसा नदी के तट पर भगवान पहुंचे, उस दिन कोई खाया पिया नहीं, सब व्याकुल थे अतः भगवान भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं भोजन किया। भगवान ने सोचा एक लोग कैसे फिरेंगे, क्या उपाय करूं। तो रात के समय भगवान की इच्छा से सबको गहरी नींद लग गई। एक तो रास्ता चले थे, थके मांदे थे, और दूसरे भगवान की ऐसी इच्छा थी, सब लोग गाढ़ी निद्रा में सो गए। जब सो गए, आधी रात हो गई, तो भगवान ने सुमंत्र जी से कहा कि हे पिता के समान हमारे पूज्य, आप ऐसा कार्य कीजिए, ये लोग सो गए हैं और मुझे वन में जाना ही है, तो आप कृपा करके मुझे रथ पर चढ़ाइए और रथ को इस गति से चलाइए कि लोगों को पता न चले कि रथ कहाँ गया, और बहुत तेज गति से चलाइए। वे तो आज्ञा के अधीन थे भगवान की। उन्होंने रथ को बहुत ही टेढ़े मेढ़े, कभी अयोध्या के तरफ कुछ दूर ले गए, वहां से ऐसे पथरीले जगह पर ले गए जहाँ कोई लीक रथ का चिन्ह नहीं दिखाई देता, कभी इधर उधर। लोग सोए रहे सोए रहे, भगवान तो आधी रात को चले गए लक्ष्मण और सीता के साथ रथ पर। सवेरे सबकी नींद खुली तो देखते हैं कि राम सीता लक्ष्मण नहीं है। ये लोग अन्वेषण करने लगे, चारों तरफ देखने लगे, लोग बिखर गए। कोई कहता था रथ इधर गया है, कोई कहता है रथ इधर गया है, इधर गया है, कहीं कोई उद्देश्य नहीं मिला। तब अंत में राम की इच्छा समझकर, भगवान की इच्छा समझकर लोग अयोध्या लौट गए। वे समझ गए कि राम हमसे छिप करके भागना चाहते हैं और चाहते नहीं है कि हम लोग उनके साथ जाएं। और इसके पहले भगवान राम ने उनसे विनय किया था कि घर पर रहिए, अपना काम धंधा ठीक से कीजिए, बच्चों का स्त्रियों का पालन कीजिए। वे सब लोग लौट गए और भगवान चलते गए। जहां जहां भगवान जाते थे वहां वहां लोग शोक में डूब जाते थे। एक तो सुख भी होता था कि इतने दुर्लभ सुंदर पुरुष को हम देख रहे हैं, परंतु बहुत प्रकार की जिज्ञासा मन में उठती थी। वन के पथ में जो लोग थे, ये लोग आपस में बात करते थे, कौन है ये, इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, कहां जा रहे हैं। गांव में कुछ ज्योतिषी होते थे, एस्ट्रोलॉजर, वे लोग भूमि पर पड़े हुए चरण चिन्ह को देख कर कहते थे इनके चरण में तो राज चिन्ह है, चक्रवर्ती सम्राट होने की योग्यता जो होती है वो इनके चरण में है। उनको क्या पता था कि चक्रवर्ती नहीं है तो ब्रह्मांडपति है, अनंत विश्व के स्वामी। तो लोग कहते थे कि ये तो राज चिन्ह है और ऐसा व्यक्ति वन में कैसे जा रहा है। वन में रहने का अर्थ था न एक पैसा साथ में रहे, न कोई वैभव, कोई सामग्री नहीं, कुछ नहीं। तो बड़े आश्चर्यचकित होते थे और उनके भुजाओं की लंबाई देखते थे, वक्षस्थल, मुख, आंखें, सब कुछ विलक्षण था। इस विश्व में कोई ऐसा नहीं, मनुष्यों की तो बात छोड़ दीजिए, देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं। भगवान इतने सुंदर और तेजस्वी हैं। तो कभी कभी गांव के लोग आते थे, पूछते थे आप कहाँ के हैं और वन में क्यों जा रहे हैं। तो परंपरा से एक के मुख से दूसरा, दूसरे के मुख से तीसरा, इस तरह लोग जान गए थे कि इनके पिताजी ने इनको वनवास दिया। पिताजी ने नहीं, इनकी सौतेली माँ ने इनको वनवास दिया। लोग कहते थे ते पितु मातु कहउ सखी पर कैसे, जिन पथे वन बालक ऐसे। अरे सखी, ये माता पिता कितने कठोर हृदय के हैं जो इतने सुकुमार बच्चे को वन में भेज रहे हैं। कैसे माता पिता है, आज तक हमने ऐसा माता पिता नहीं सुने। उन्होंने क्या अपराध किया था कि उस माँ ने इनको वनवास दिया। तो गांव के लोग जाकर कहते थे आप वन में मत जाइए, वन बहुत कठिन वास है, आप हमारे घर रहिए, हम यही आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे, कंद मूल फल जुटाएंगे, गांव से बाहर ही आपके लिए हम कुटीर बना देंगे, आप यहाँ से मत जाइए, हम लोग आपको प्रसाद देंगे, कंद मूल फल देंगे, आपको संकोच होगा यदि हमारे घर रोज खाने में। हम लोग 360 से अधिक वासी हैं इस गांव में। एक एक घर, एक एक व्यक्ति कंद मूल फल जुटाएगा, बस आसानी से हो जाएगा। आप यहीं रहिए। भगवान कहते थे, हमारे पिताजी ने कहा है हमको वनवासी बनने के लिए, इसलिए मैं तो वन में जाऊंगा। 14 वर्ष राम वनवास, इस तरह से भगवान चलते जाते थे। चलते चलते वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। एक बार प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने भारत यात्रा निकाला था अयोध्या से चित्रकूट। भरत जी बाद में गए थे भगवान राम को मनाने के लिए, तो उसी स्मृति में भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध श्रृंगवेरपुर पड़ता है गंगा जी के तट पर, तो भगवान वहां पहुंचे। वहां निषाद रहते थे उस गांव में, और भी लोग थे, तो निषादों के स्वामी थे वे महाराज दशरथ के बहुत प्रेमी थे। अकस्मात उन्होंने देखा श्रृंगवेरपुर के पास हल्ला हुआ कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र यहाँ आ रहे हैं, और ऐसी ऐसी घटना है, उनकी सौतेली माँ ने उनको वनवास का वर माना। तो निषाद राज अपने मंत्रियों के साथ गए भगवान से मिलने के लिए, और भगवान को इन्होंने प्रणाम किया तो भगवान उठाकर इन्हें हृदय से लगा लिया, और बहुत ही भाग्य की प्रशंसा करने लगे। कहो मेरा कितना भाग्य है, आप चलिए हमारी राजधानी में श्रृंगवेरपुर में, आप सुख से रहिए। लेकिन भगवान ने और भी बातें बताई कि मित्र, मैं धर्म के बंधन में हूँ, पिता के वचन को सत्य करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 14 वर्ष किसी गांव में वास नहीं करूंगा, और न तो गांव में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं जैसे खेती के द्वारा या फैक्ट्री में बनी हुई वस्तुएं मैं नहीं खाऊंगा। कंद मूल फल जब वन में मिलता है वही खाऊंगा, और सोऊंगा जमीन पर, किसी गांव में या नगर में नहीं रहूंगा, यह मेरे सत्सर्थ है, इसलिए मैं आपके गांव में नहीं जा पाऊंगा, आप हमें क्षमा करें। निषाद राज तो बहुत रोने लगे, विषाद में पड़ गए, और वे कहे भगवान से, ठीक है आप चलिए गंगा जी के तट पर रहिए। तो निषाद राज स्वयं ही स्थान जोहने लगे कि राम कहाँ ठहरेंगे। एक सिंसुपा वृक्ष, एक अशोक का वृक्ष था, बहुत ही सघन छाया थी उसकी। तो निषाद राज ने कहा कि ठीक है तब आप यही वास कीजिए, और निषाद राज अपने हाथ से कुछ सुकोमल कुश से तृण और पल्लव वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते तोड़ करके और भगवान के लिए बहुत सुंदर आसन लगाए बालुका पर वृक्ष के तले में, और इसके बाद उन्होंने आज्ञा दिया, उनके बहुत से सेवक अनेक प्रकार के कंद मूल फल ला ला करके भर दिए कई प्रकार से, और पानी भी ला ला करके नए नए पात्रों में भर करके रखे, बहुत सुंदर पानी निर्मल जल गंगा जी का ला लाए। तो भगवान सब फल खाए ने, श्रृंगवेरपुर पड़ता है गंगा जी के तट पर, तो भगवान वहां पहुंचे। वहां निषाद रहते थे उस गांव में, और भी लोग थे, तो निषादों के स्वामी थे वे महाराज दशरथ के बहुत प्रेमी थे। अकस्मात उन्होंने देखा श्रृंगवेरपुर के पास हल्ला हुआ कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र यहाँ आ रहे हैं, और ऐसी ऐसी घटना है, उनकी सौतेली माँ ने उनको वनवास का वर माना। तो निषाद राज अपने मंत्रियों के साथ गए भगवान से मिलने के लिए, और भगवान को इन्होंने प्रणाम किया तो भगवान उठाकर इन्हें हृदय से लगा लिया, और बहुत ही भाग्य की प्रशंसा करने लगे, कहो मेरा कितना भाग्य है। आप चलिए हमारी राजधानी में श्रृंगवेरपुर में, आप सुख से रहिए। लेकिन भगवान ने और भी बातें बताई कि मित्र, मैं धर्म के बंधन में हूँ, पिता के वचन को सत्य करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 14 वर्ष किसी गांव में वास नहीं करूंगा और न तो गांव में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं जैसे खेती के द्वारा या फैक्ट्री में बनी हुई वस्तुएं मैं नहीं खाऊंगा। कंदमूल फल जो वन में मिलता है वही खाऊंगा और सोऊंगा जमीन पर, किसी गांव में या नगर में नहीं रहूंगा, यह मेरे सत्सर्थ है, इसलिए मैं आपके गांव में नहीं जा पाऊंगा। आप हमें क्षमा करें। निषाद राज तो बहुत रोने लगे, विषाद में पड़ गए और वे कहे भगवान से, ठीक है आप चलिए गंगा जी के तट पर रहिए। तो निषाद राज स्वयं ही स्थान जोहने लगे कि राम कहाँ ठहरेंगे। एक सिंसुपा वृक्ष, एक अशोक का वृक्ष था, बहुत ही सघन छाया थी उसकी। तो निषाद राज ने कहा कि ठीक है तब आप यहीं वास कीजिए। और निषाद राज अपने हाथ से कुछ सुकोमल कोश से तृण और पल्लव वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते तोड़ करके और भगवान के लिए बहुत सुंदर आसन लगाए बालुका पर वृक्ष के तले में। और इसके बाद उन्होंने आज्ञा दिया, उनके बहुत से सेवक अनेक प्रकार के कंद मूल फल ला ला करके भर दिए कई प्रकार से, और पानी भी ला ला करके नए नए पात्रों में भर करके रख, बहुत सुंदर पानी निर्मल जल गंगा जी का लाए। तो भगवान सब फल खाए नहीं। भगवान ने कहा कि मुझे 14 वर्ष मुनियों का व्रत, मुनियों का वेश और मुनियों का आहार करना है। इस संसार में भगवान मनुष्यों के सृष्टि किए हैं तो सबका आहार भी निश्चित किए हैं। यदि कोई मुनि है, साधु है, तो उसे बहुत सीमित खाना चाहिए और एक तो मात्रा में भी वो कम होनी चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए और वैरायटी भी बहुत नहीं होनी चाहिए। यानी कि 10-20 थाली में साधु सन्यासी को परोस दिया गया और खा भी नहीं रहा। आजकल तो ऐसे लोग साधुओं को भोजन करा रहे हैं, बेचारे को डायबिटीज है और उसको 500 मिठाइयां गांज देते और कहते प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद के बाद बांट दिया जाएगा, तो तुमको भी डायबिटीज हो जाएगा, प्रसाद बांट दिया जाएगा। यह सब पाखंड है। वास्तव में भोजन के विषय में मुनियों का जो नियम है उसे अवश्य पालन करना चाहिए। मुझे भगवान ने कहा कि मैं मुनि व्रत धारण किया हूं, इसलिए मुनि का आहार और मुनि का वेश धारण करूंगा। तो श्रृंगवेरपुर से एक भी मिठाई नहीं आई कि किसी बहुत सुंदर दुकान से मिठाई आ गई, वैसी बात में कंदमूल फल आए जो वन में गांव से बाहर उत्पन्न होते हैं। तो भगवान ग्रहण नहीं किए, थोड़ा सा ग्रहण किए और जल पिए और वहीं उस वृक्ष के नीचे भगवान सोए रात को। श्री लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे भगवान के, चरण कितनी देर दबाए। रामायण में लिखा गया है जब भगवान को नींद आ गई तब लक्ष्मण के धीरे से उठे और जाकर वीरासन से पहरा देने लगे रात्रि के समय। लक्ष्मण जी एक दिन भी एक सेकंड भी नहीं सोए, इस तरह से जितेंद्रिय थे। तो जब भगवान सोए तो निषाद राज भगवान की इस स्थिति को देखकर जमीन पर रामचंद्र सोए हैं वे फूट फूट करके बच्चे की तरह रोने लगे। जहां लक्ष्मण जी बैठे थे वहां पर चले गए और बहुत रोने लगे कि मुझे यह देख करके बहुत पीड़ा हो रही है कि मेरा घर इतना सुंदर है, इतनी सुंदर राजधानी है, लेकिन फिर भी भगवान जमीन पर सो रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है और वे लगे कई कई को गाली देने।